नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। घड़ी में समय हुआ है 8:30 बजे का और ये समय होता है खेल खबरों को समेट कर लाने का, उन पे चर्चा करने का। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राहुल बैनर्जी। राहुल नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
धन्यवाद लवली।
तो राहुल, पेरिस ओलंपिक शुरू होने में अब हफ्ता भी नहीं रह गया, बहुत कम दिन रह गए हैं और फिंगर क्रॉस्ड के हमारे खिलाड़ी वहां अच्छा प्रदर्शन करें डिफरेंट इवेंट्स में।
तैयारी तो देखिए इस बार बहुत बढ़िया हो चुकी है, जिस तरह एथलीट्स को उनकी तैयारी में उनके हिसाब से जो भी उनकी दरकार थी, जो जरूरतें थी, कोचिंग की बोले या बाहर के जाने के, अपने ट्रेनिंग कैंप्स करने की, जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स की, अब जो हम पढ़ रहे हैं अखबारों में, जो भी उनकी तरफ से मांग आई है, मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट दिया गया है।
अब खिलाड़ियों की बारी है परफॉर्म।
अब देखिए अब उनकी बारी है, क्योंकि अब जैसे अब किस तरह उन्होंने उनकी तैयारियां हुई है, वार्म अप कैसे हुआ है, पीक टाइम में पहुंच रहे कि नहीं, फॉर्म कैसा है, ये अभी देखने को मिलेगा अगले 2-3 हफ्तों में।
तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, पहले सुर्खियां। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 112 रन का लक्ष्य दिया। कल भारत का मुकाबला होगा संयुक्त अरब अमीरात से। राफेल नडाल स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। स्पेन के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। और विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में टीम स्पर्धा में भारत ने ब्राजील को 3-0 से हराकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल किया। शुरुआत सबसे पहले क्रिकेट से ही करते हैं राहुल। श्रीलंका के दांबुला में महिला एशिया कप क्रिकेट 2020 टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जहां बांग्लादेश ने श्रीलंका को 112 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी बांग्लादेश और निर्धारित 20 ओवर में उसने 8 विकेट पर बनाए 111। एक समय इनका स्कोर था 6 रन पे 3 विकेट जा चुके थे, फिर थोड़ा संभाला 17 पे 4 और उसके बाद 111 रन बनाना, यानी एक सम्मानजनक स्कोर बना लिया, जिसमें सुल्ताना का योगदान रहा 48 रन।
हम देखिए T20 का कभी कभी ऐसे पैटर्न ऐसे रहता है कि जो पहले के 4-5 ओवर में जल्दी विकेट चिटक जाते हैं, फिर एक रीबिल्डिंग प्रोसेस बोले जो भी है, जो इस वाले मैच में भी ऐसे देखा गया। तो कुल मिलाकर 112 का लक्ष्य उतना बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ये छोटे टारगेट्स बड़े ट्रिकी हो जाते हैं। जो चेजिंग टीम है वो सोचते कि बहुत ज्यादा है, अगर कहीं पे ढील हो गया तो दे कैन गेट इन टू ट्रबल। लेकिन खास करके जब होम टीम है, मेरे ख्याल से श्रीलंका के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 112 चेज करने में।
सुल्ताना जो है नॉट आउट रही 48 पर, इसके अलावा रन बनाए थे अख्तर ने 25 रन बनाए, बाकी कोई खिलाड़ी ज्यादा वो नहीं कर पाया। और देखा जाए तो राहुल, काफी उम्मीद श्रीलंका बांग्लादेश को भी इतना कम करके नहीं आंक सकते। भारत तो खैर एशिया कप का वर्तमान चैंपियन है ही, दोनों अच्छी टीमें हैं, तो एक अच्छा मैच जरूर देखने को मिलेगा।
खास करके T20 फॉर्मेट में आप किसी दिन कुछ भी हो सकता है। आप ये कहना कि ये सबसे ज्यादा फेवरेट टीम है या इनके खिलाड़ी बहुत ज्यादा ये हैं आगे हैं बाकी सब पीछे, वो ऐसे एक दिन में अगर एक टीम चल गई तो वो किसी भी बड़ी टीम को भी हरा सकती। जैसे हमने देखा जो हाल में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, कौन कितनी बड़ी बड़ी टीमें चली गई पहले राउंड में दूसरे, तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन T20 क्रिकेट।
और इससे पहले जो एक मैच खेला गया वहां थाईलैंड ने मलेशिया को 22 रन से हराया। थाईलैंड ने 134 रन का लक्ष्य दिया था मलेशिया को। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थाईलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 133 रन बनाए। नानापत कोचारिनकाई नमाप ने जो है 40 रन की के लिए, मलेशिया की तरफ से माहिरा इज्जती इस्माइल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जीत के लिए 134 रन का लक्ष्य मिला था। मलेशिया की टीम 8 विकेट पर 111 रन ही बना सकी। यहां वान जूलियन ने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए। तो ये भी मैच थाईलैंड और मलेशिया देखा जाए तो कंपेयर
अगर बोले तो ये एक्चुअली आश्चर्यजनक है कि थाईलैंड जैसी टीम जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है क्रिकेट में, और मलेशिया देखे जहां वे ब्रिटिश राज करते थे उनके कम से कम एक चिन्ह तो रह गया क्रिकेट खेलने का, और मलेशिया की टीम को अगर थाईलैंड की टीम ने हराया, तो मैं मानता हूं कि ये जो ग्लोबलाइजिंग द गेम, स्प्रेडिंग द गेम अगर कहो तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा सक्सेस स्टोरी होगा।
अच्छा भी है, नई टीमें आगे आती हैं तभी टूर्नामेंट में और कॉम्पिटिशन में मजा आता है। और कल रविवार को भारत के सामने होगी संयुक्त अरब अमीरात की टीम। जैसा हम जानते हैं भारत ने शुक्रवार को कल अपने पहले मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराया था। चिर प्रतिद्वंदी वो टीम है चाहे मेंस कर लो चाहे वीमेंस वर्ग में कर लो, जबकि संयुक्त अरब अमीरात नेपाल से हार गया था। अंकुर की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे।
आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल संयुक्त अरब अमीरात पर जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने उतरेगी। मौजूदा चैंपियन भारत ने कल खेले गए मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। यूएई को हरमनप्रीत कौर की टीम को हराने के लिए चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा। भारत के फिलहाल 2 अंक हैं और अमीरात को हराने से उसके 4 अंक हो जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह और पूजा वस्त्राकर ने अच्छी गेंदबाजी की थी। टीम प्रबंधन को बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के जरिए वापसी की है। पाकिस्तान के साथ मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक प्रदर्शन करते हुए 35 गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की थी। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने 85 रन की साझेदारी की थी। उधर संयुक्त अरब अमीरात की टीम नेपाल से 6 विकेट से हारने के बाद वापसी की कोशिश करेगी। ईशा रोहित ओझा की अगुवाई वाली टीम ने खुशी शर्मा और कबिशा एगोडेज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि भारत और यूएई की टीम के बीच पलड़ा भारत का ही भारी लग रहा है। अब तक दोनों टीमें केवल 1 बार आमने सामने रही हैं, जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी। स्पोर्ट्स कैन अंकुर सिंह।
तो देखा जाए, जाहिर तौर पे संयुक्त अरब अमीरात कोशिश करेगी, लेकिन बहुत मुश्किल होगा क्योंकि भारत वर्तमान चैंपियन है, अच्छे खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका से सीरीज बराबर करके आए। वैसे भी ये टीम मजबूत है, टीम इंडिया वीमेन्स
एक्सपीरियंस टीम है, काफी खेल चुकी है, काफी बड़े टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल पहुंची है। हालांकि जीती नहीं है ज्यादा, उतने हिसाब से अगर टोटल ट्रॉफी अगर देखी जाए, लेकिन काफी लंबा एक साथ ये खेली है, ये टीम प्लेयर्स जो है एक साथ खेल रही हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं, टीम का जो सेटिंग है बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस है। तो मैं वैसे भी अगर आप देखें तो क्रिकेट आजकल इतना खेला जा रहा है कि कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है ट्रैक रखना कि कौन किसके साथ खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, कौन से मैच हो रहे हैं।
क्रिकेट बहुत है ना, अच्छा है, महिलाओं को एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन वो कर भी रही है।
इसके बाद वर्ल्ड कप होगा तो उसके लिए मेरे ख्याल से एक तैयारी टाइप का
देख ही रहा होगा कि कितना हम तैयार हैं
जी।
अब चलते हैं रैकेट की दुनिया में। राफेल नडाल स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में राफेल नडाल ने ड्यूजे एजुकोविक को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में इस समय तियागो ऑगस्टिन तेरांते का मुकाबला नूनो ब्रोगेस से चल रहा है। दोनों ही खिलाड़ी जो है एक एक सेट जीत चुके हैं। क्वार्टर फाइनल में नडाल ने अर्जेंटीना के मारियानो नोवान को 6-7, 7-5, 7-5 से हराया था। जैसे कि स्कोर कह रहा है कि क्वार्टर फाइनल में भी नडाल को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, एक सेट वो हार गए थे, इसी तरीके से उनको सेमीफाइनल में भी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन राफेल नडाल का शायद एक्सपीरियंस काउंट करता है कि एक सेट पिछड़ने के बाद फिर वो फाइनल में पहुंच जाते हैं।
प्लस दूसरा बात इनके फिटनेस का है कि काफी 20 साल ज्यादा उन्होंने खेला भी नहीं है और बार बार टूर्नामेंट में आके वो रिटायर होने या लास्ट मिनट में कैंसिल कर रहे अपना खेलना। नहीं, उम्र भी होती है और उनका राफेल नडाल का जो गेम है इतने पावर के ऊपर बेस्ड है कि शरीर के ऊपर जिस तरह के दबाव पड़ती है, मेरे ख्याल से उनको बार बार इंजरीज जो हो रही है रिसेंटली। अगर आप पैरेलल देखें तो टाइगर वुड्स जो गोल्फ में हैं, एक टाइम में बहुत ही महान खिलाड़ी थे, लेकिन आजकल इतना स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि एक टाइम में इतनी इंजरीज हो चुकी है उनके बॉडी में कि उसको रिकवर करना या उस लेवल में पहुंचना दोबारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से राफा भी अब अगर देखें तो उनकी उम्र भी ऐसे करीबन 40 के पहुंच ही रहे हैं। रॉजर फेडरर तो रिटायर करके चले गए, नोवाक अभी हमने देखा कि उनमें अभी भी इतनी काबिलियत,
इंजरी से भी परेशान है, लेकिन
वो भी फ्रेंच ओपन के बीच में से निकल गए थे इंजरी, घुटने की इंजरी की वजह से। तो अब ये एक जनरेशन मेरे ख्याल से निकल रहा है और ये जो यंगर प्लेयर्स आ रहे हैं अब मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस उन पे होगा।
दूसरे सेमीफाइनल में राहुल, हम ये भी बता दें कि नूनो ब्रोगेस ने तियांगो ऑगस्टिन तेरांते को 6-3, 6-4 से हराया, यानी फाइनल में राफेल नडाल के सामने जो है नूनो ब्रोगेस होंगे। तो ये भी देखा जाए, अभी नए खिलाड़ी हैं और अनुभव शायद राफेल नडाल का काम आए या हो सकता है एक नया चैंपियन यहां।
फिटनेस कैसी है, उनके जो चोट है वो कितना रिकवरी वो कर पाए हैं और यंगर प्लेयर के सामने कितनी देर खड़े। अभी जैसे मैं कह रहा था विंबलडन में हमने देख ही लिया, ये जो प्लेयर जिसका सबसे महान रिकॉर्ड है टेनिस में उसको सीधे सेट्स में हराया जो अल्कराज ने, तो अब वक्त का भी एक खेल होता है शायद। अब एक्सपीरियंस जैसे आपने कहा, एक्सपीरियंस में अगर निकल गए तो निकल गए, फिटनेस वी विल सी डिपेंड्स।
जी। और फुटबॉल की बात करें राहुल, स्पेन के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इगोर स्टिमिक की वो जगह लेंगे। एआईएफएफ की कार्यकारी समिति ने आज हुई बैठक में 55 साल के मार्केज को जो है कोच नियुक्त किया है। मार्केज वर्तमान में आईएसएल टीम एफसी गोवा के मुख्य कोच है। मार्केज 2024-25 सत्र में एफसी गोवा के मुख्य कोच के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे। ऐसा एआईएफएफ ने कहा है कि पूर्णकालिक आधार पर राष्ट्रीय टीम के कोच बनने से पहले वो दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ संभालेंगे। इस बीच अनिल कुमार प्रभाकरन को एआईएफएफ का जो है खेल संस्था का महासचिव नियुक्त किया गया है। अगर बात करें इगोर स्टिमिक की, तो जब हम वर्ल्ड कप का क्वालिफायर फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था उसके तीसरे दौर में जगह बनाने में नाकाम रहे थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। क्या उम्मीद लगती है अब मनोलो मार्केज?
अब देखिए, नया कोच आएगा, वो अपनी तरफ से अपने हिसाब से टीम बनाएगा। अब छेत्री, सुनील छेत्री भी रिटायर कर चुके हैं, तो एक तरफ से अगर देखें ऊपर में टोटल चेंज हो गया है। कोच भी चले, नए आए हैं, कप्तान भी नए बनेंगे, तो ये टीम तैयार होने में टाइम लगेगी। इतना तो कहना जरूर होगा कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग एंड रहा जब हमारी टीम करीब पहुंच के लास्ट स्टेज तक पहुंच के एक आधा गोल नहीं कर पाए। जरूर जो हमारे सीनियर प्लेयर्स को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा। सुनील छेत्री बेचारे रोते हुए चले गए, एंड ही वाज रियली, अब ऐसे महान प्लेयर हैं कि पूरी दुनिया से उनके लिए मैसेजेस आए कि बिडिंग एम फेयरवेल। तो नाउ अब बीच में यही बात चली थी कि अब फॉरेन कोच को रखने के बाद अब इंडियन कोच रखना चाहिए या नहीं, तो शायद लास्ट मिनट में फिर दोबारा चेंज किया होगा कि अब दोबारा एक फॉरेन कोच उन्होंने रख लिया।
अब पेरिस ओलंपिक की बात करें तो खिलाड़ी धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे राहुल, और आज हम बात करते हैं निशानेबाजी में हमें कितनी उम्मीद है, और बहुत जरूरी है निशानेबाजी में हम मेडल जीते। मुकेश की रिपोर्ट सुनते हैं।
ओलंपिक में भारत का निशानेबाजी में अमूमन दबदबा रहता है। भारत ने हॉकी के बाद सबसे अधिक मेडल इसी खेल में जीते हैं। निशानेबाजी में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने दिलवाया था। खेलों के इस महाकुंभ में भारत निशानेबाजी में अब तक 2 रजत और 1 कांस्य समेत 4 पदक जीत चुका है। 2004 से 2012 तक तीनों ओलंपिक्स में हमारे निशानेबाजों ने मेडल पर निशाने साधे हैं। इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि भारत ने 21 कोटा स्थान हासिल किए हैं। ये पहली बार है जब भारत को हर कैटेगरी में कोटा मिला है। ओलंपिक इतिहास में हमारा अब तक का सबसे बड़ा शूटिंग दल हिस्सा ले रहा है। दल में 8 विश्व चैंपियन और रिकॉर्ड होल्डर निशानेबाज हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, एला वेनिल वलारिवन, सरबजोत सिंह, रिदम सांगवान, मनु भाकर और सिफ्त कौर सामरा अपने अपने इवेंट के विश्व चैंपियन है, जबकि विजय वीर सिद्धू और ईशा सिंह के नाम विश्व रिकॉर्ड है। लेकिन सच ये भी है कि हमारे निशानेबाज पिछले 12 वर्ष से ओलंपिक में पदक पर निशाना नहीं लगा सके हैं। ऐसे में उनके सामने पदकों का सूखा समाप्त करने की मुश्किल चुनौती होगी। अब तक कोई भी महिला निशानेबाज इन खेलों में पदक नहीं जीत सकी है। 24 साल पहले अंजलि भागवत ने 10 मीटर एयर राइफल में 8वां स्थान हासिल किया था। ऐसे में महिला निशानेबाजों के सामने भी पहली बार पोडियम पर चढ़ने की चुनौती होगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
और बहुत जरूरी है राहुल, क्योंकि अगर देखा जाए कि 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता, उसके बाद अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, विजय कुमार, उसके बाद से जो सूखा है, बहुत जरूरी है कि शूटिंग में आए, क्योंकि शूटिंग हमारा अच्छा हमेशा एक प्लस वो रहता है इवेंट।
अगर देखें सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टीम, पहली बार इतने लोग हमारे इतने शूटर जा रहे हैं, कोटा में उन्होंने हासिल किया है अपनी जगह। अब बात यह है, ये है कि अगर हम वर्ल्ड कप, एक्चुअली शूटिंग में वर्ल्ड कप थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है, क्योंकि साल में 4 वर्ल्ड कप होते हैं। ये फुटबॉल वर्ल्ड कप या क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसा नहीं कि 4 साल में एक बार होता है, ये साल में 4 होते हैं। तो वर्ल्ड कप जीता हुआ शूटर बार बार बोले तो शायद लोगों को ये गलतफहमी होती है कि वो काफी, लेकिन ओलंपिक में जाके प्रेशर, वहां में उसका प्रेशर मैनेज करना, संभालना, किस तरह से उनकी तैयारी, मेंटल तैयारी किस कैसे हुई है, वो एक बिल्कुल ही अलग टेस्ट होता है। जो बार बार अभिनव बिंद्रा, इन्होंने इसी बात पे बड़ा स्ट्रेस किया है कि मेंटल प्रिपरेशन,
लेकिन बहुत जरूरी है। हर टूर्नामेंट अलग होता है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार जरूर वो सुखा,
उम्मीद तो हर बार रहती है जब हमारी टीमें जाती
जी
है।
और समय समाप्त हो रहा है, चलते चलते ये और बता दें, अमरीका के ह्यूस्टन में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के टीम स्पर्धा में भारत ने ब्राजील को 3-0 से हराया है। ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। समय नहीं है किसी और खेल खबर पर चर्चा करें, आप स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा हुई, इसके लिए धन्यवाद। ऑल लिसनर्स, हम कल फिर मिलेंगे, फिलहाल शुभरात्रि।